शांति। राजयोग परमात्मा की सही पहचान देता है, खुद की पहचान देता है और मन को इतना शुद्ध बनाता है जो सहज ही उसमें ईश्वर की याद टिक पाती है। तो पहली बात है कि मैं कौन हूँ। जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो कितने उत्तर मिलते हैं। कोई अपना शरीर का नाम बता दे, कोई अपना व्यवसाय बता दे, कोई स्थान बता दे, कोई भाषा बता दे, कोई धर्म बता दे, कोई जाति बता दे, लेकिन ये तो सब परिवर्तनशील चीजें हैं। नाम भी तो 6 दिन के बाद ही रखा होगा, जब छठी मनाई होगी तब नामकरण किया होगा, उसके पहले भी तो थे ना। धर्म परिवर्तन भी कई लोग कर लेते हैं तो वो भी परिवर्तनशील है। जाति भी बदल देते हैं, देश भी बदल देते हैं, प्रांत भी बदल देते हैं, तो बदल तो देते रहते हैं। हर चीज यहाँ परिवर्तनशील है इस संसार के अंदर। ये शरीर भी कितना परिवर्तनशील है, देखिए 8-10 साल में इस शरीर की जितनी भी कोशिकाएं हैं वो सब बदल जाती है। वही कोशिका नहीं रहेगी 10 साल के बाद, यहाँ बदल जाएगी, नई नई कोशिकाएं बनती जाती है सेल्स, और पुरानी सड़ती जाती, टूटती जाती है, निकलती जाती है। इसलिए नई नई बीमारियां शरीर को लगती रहती है क्योंकि बदल रहा है सब। तो अध्यात्म की भाषा में जो चीज परिवर्तनशील है वो असत्य है। इसीलिए कहा जगत मिथ्यम ब्रह्म सत्यम, क्योंकि जगत में सब कुछ बदलता रहता है, परंतु मैं वो हूँ जो नित्य हूँ, स्थिर हूँ, एक रस हूँ, अविनाशी हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ, अमित हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। इस शरीर से पहले भी था और शरीर के बाद भी रहूंगा, वो मैं हूँ। कई बार हम कहते भी हैं, हम मेरा पूर्व जन्म या आगे का जन्म ये किसका है। शरीर तो इस जन्म में ही मिला है, ये तो न पूर्व जन्म में था न आगे जन्म में होगा। कई ऐसे छोटे छोटे बच्चे हैं जो अपना पूर्व जन्म का वर्णन करते हैं कि मैं ऐसे था, मेरे बच्चे थे, मेरा ये था, मेरा घर था, मेरा फलाना था। रवि तो वो छोटा बच्चा है तो उसको पूर्व जन्म की याद रह जाती है। छोटे छोटे बच्चे इतने अच्छे मास्टर होते हैं, कोई कला में किसने सिखाया भी नहीं, ऐसे ही अपने आप आ गया। ये पूर्व जन्म से लेकर के आती है आत्मा संस्कार। तो इसीलिए ये शरीर ही सब कुछ नहीं है, पर इस शरीर के भीतर मैं कहने वाली एक चैतन्य शक्ति, अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। और मैं आत्मा वास्तव में शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ। ये संसार को तो कहा जाता है ये रंगमंच है। इसको रंगमंच क्यों कहते हैं, क्योंकि आत्मा इस संसार रूपी रंगमंच पर एक अभिनेता की तरह है, और इस शरीर को वस्त्र माना गया है जो आत्मा धारण करती है और संसार रूपी रंगमंच पर अभिनय करती है। अब अभिनय तो कई प्रकार के हम कर लेते हैं, सुबह से लेकर के रात्रि तक कितने अभिनय हम वैसे भी करते हैं, सब अपने पत्नी के साथ अलग, बच्चों के साथ अलग, पिता के साथ अलग, दोस्तों के साथ अलग, बॉस के साथ अलग, हमारे जो कलीग्स हैं उनके साथ अलग, हमारे जो नीचे काम करने वाले उनसे अलग, अलग अलग अभिनय है। तो अनेक प्रकार के रोल हम बजाते हैं, लेकिन मेरी वास्तविकता क्या है, मेरा कौन सा सच्चा व्यक्तित्व है, इसको समझना, ये खुद को समझना है। इसीलिए कहावत है कि आप वो नहीं है जो आप खाते हैं। जो आप खाते उससे तो आपका शरीर बनता है, पर शरीर किसी का बहुत मोटा हो परंतु है बहुत हल्का, सब काम इतना तेजी से कर लेता है, तो इसलिए शरीर का भारी होना ही सब कुछ नहीं है। कोई इतना दुबला पतला होगा लेकिन मन भारी रहता है तो कुछ भी काम नहीं करेगा, तो भारी उसको कहा जाएगा। तो आप जो खाते हैं वो आप नहीं हैं, आप जो पहनते हैं वो आप नहीं हैं, क्योंकि कोई जेंटलमैन बन करके टाई कोट पैंट ये सब पहन ले लेकिन अंदर में उसका मन बड़ा मलिन हो, कोई आतंकवादी हो और साधु सन्यासी की ड्रेस पहन करके साधुओं के मंडली में घूमे पता भी नहीं चले। इसलिए जो पहनते हैं वही तो हम नहीं हैं, परंतु हम जो सोचते हैं जो अनुभव करते हैं जो महसूसता होती है वास्तव में वो मैं हूं। अब वो मैं कौन हूं इसको समझना माना खुद को समझना, जिसको हम कहते हैं आत्मा। अब आत्मा क्या चीज है? कई लोग कहते हैं हाँ आत्मा है, पर क्या कहेंगे मेरे अंदर एक आत्मा है। अब ये भी सही नहीं है वाक्य, मेरे अंदर एक आत्मा है ये किसने कहा? जब आत्मा निकल गई तो ये शरीर कहेगा क्या अभी मेरे अंदर आत्मा नहीं है? वो तो मुर्दा हो गया, वो कहेगा कैसे? तो ये बोलने वाली सुनने वाली देखने वाली शक्ति कौन है? आप कहेंगे आंखें देखती है, मुख बोलता है, कान सुनते हैं, लेकिन हम जब बोलते हैं तो हम क्या कहते हैं मैं देख रहा हूं। अब आंखें तो चलो देखने का काम करती लेकिन बोलने का तो काम नहीं करती ना, पर फिर भी हम कहते हैं मैं देख रहा हूं। कान सुनने का काम तो करते हैं लेकिन बोलने का काम तो नहीं करते, फिर भी हम कहते हैं मैं सुन रहा हूं। मुख बोल रहा है पर क्या बोल रहा है? मैं देख रहा हूं, मुख तो नहीं देख रहा है। तो जबकि न मुख देख रहा है न आंखें बोल रही है न कान देख रहे हैं, पर आंखें देख रही है कान सुन रही है मुंह बोल रहा है, पर तीनों के लिए हम मैं का शब्द प्रयोग करते। इससे सिद्ध है कि मैं तीनों से अलग हूं। कई लोग कहते हैं हाँ मेरे शरीर में मेरी आत्मा है, अब ये भी सही नहीं होगा। मेरे शरीर में मेरी आत्मा तो मैं क्या तीसरी चीज हूं? वास्तव में सही वाक्य क्या है? मैं आत्मा मेरे शरीर में हूं। जरूर शरीर मेरा है परंतु इस शरीर के भीतर मैं बोलने वाली वो चेतन शक्ति आत्मा हूं, जो आंखों द्वारा देख रही हूं, मुख द्वारा बोल रही हूं, कानों द्वारा सुन रही हूं, मैं मालिक हूं। तो राजयोग हमें सिखाता है कि इंद्रियों का तो मालिक अनुभव करो अपने आप को। ये इंद्रियां मालिक नहीं है, आत्मा मालिक है, और आत्मा मालिक बनकर के इस देह रूपी इंद्रियों को चलाए। जैसे ड्राइवर के हाथ में गाड़ी का पूरा कंट्रोल है तो गाड़ी चलाना तो बड़ा सुखदायी लगता है, लेकिन अगर ड्राइवर का कंट्रोल छूट जाए गाड़ी पर या ब्रेक लगाने की बजाय एक्सेलरेटर दबा दे या नशा पिया हुआ हो ड्राइवर तो उसको पता ही नहीं होगा कि कब ब्रेक लगानी है कहां मुड़ना है, एक्सीडेंट कर देगा। तो अगर मुझे ये नहीं मालूम मैं कौन हूं तो मैं जीवन में कितने एक्सीडेंट्स कर देती हूँ, कर्मों में एक्सीडेंट्स। इसीलिए कई बार हम ऐसे गलत काम कर लेते हैं फिर क्या कहते हैं पता नहीं कैसे हो गया। कोई ड्राइवर कह दे पता नहीं कैसे एक्सीडेंट हो गया, पता नहीं क्या होता है, कंट्रोल तो आपके हाथ में था, आप गाड़ी को थोड़ी दोष दे सकते हो, गाड़ी तो बहुत अच्छी है। तो इसीलिए पता नहीं शब्द कहना भी अज्ञान है। ये क्यों हम कहते हैं? क्योंकि इंद्रियां मालिक हो गई है। अब राजयोग के माध्यम से हम अपने आप को जब पहचानते हैं तो महसूस करते हैं कि मैं आत्मा इन आंखों से देख रही हूं। अब नहीं देखना चाहूं देखते हुए न देखूं, ये आंखें तो खिड़कियां हैं, खिड़कियों से नहीं देखना है आपके हाथ में, खिड़की को थोड़ी दोष देंगे कि क्यों देख रहे हो। कानों से नहीं सुनना है तो नहीं सुनो, कानों को थोड़ी दोष देंगे क्यों सुन रहे हो। मुख से नहीं बोलना है तो चुप रह सकते, ऐसे थोड़ी है। पता नहीं कैसे मुख से ये शब्द निकल गया, माइक्रोफोन को थोड़ी आप दोष दे सकोगे ये क्यों बोला, माइक्रोफोन ने तो बोला ही नहीं है, तो हमने बोला माइक्रोफोन के द्वारा। इसलिए कई बार हम आंखों को, कान को, मुख को दोष दे देते, हाथों को, अरे ये हाथ तुमने क्यों मारा, अरे ऐसे कैसे हाथ मारेगा बिना आपकी परमिशन के, तो मैं कौन हूँ ये पता ही नहीं है। इसलिए हम अपने आप को ये देह समझ बैठे हैं, इंद्रियां हूँ मैं यही समझ बैठे हैं, और इनके पीछे ही सारा जीवन श्वास संकल्प हम कमा रहे हैं, समझते बस खाने के लिए जीना है, कहने के लिए जीना है, घूमने फिरने के लिए जीना है, नाचने गाने के लिए जीना है, इसलिए नहीं। जीने का लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, हम क्यों आए इस संसार में। वास्तव में ये दुनिया एक रंगमंच है, तो एक एक्टर की भांति आए, एक्टर बहुत प्रकार की एक्टिंग करता है, अभिनय करता है, लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप को कभी नहीं भूलता है। तो कर्म करने के लिए आए, कई कहते क्यों आए इस संसार में, कर्म भी क्यों करें। तो आत्मा एक बहुत बड़ा कलाकार है, उस कलाकार को मंच चाहिए एक्टिंग करने लिए। जैसे कल देखा आपने एक बच्ची नृत्य कर रही थी, गायक गा रहे थे, ये कला है उनके अंदर। अब वो कलाकार चाहेगा कि मैं नृत्य करूं, मैं गाऊं, मुझे मंच चाहिए, सभा चाहिए। तो परमात्मा भी कहते हैं कि आत्मा भी बहुत बड़ी कलाकार है, कर्म करने की कला उसके अंदर निहित है, अब उसके लिए मंच चाहिए। दूसरा, उस कर्म में क्या कला प्रदर्शित करें, जीवन में हम क्या चाहते हैं, सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, खुशी मिले। वास्तव में हम इसीलिए इस दुनिया में आए कि हम अपने कर्मों से वो प्रदर्शित करें, सबको बांटे। आज क्या हो गया, हम ये मांगते हैं मुझे कोई प्यार नहीं करता, अरे प्यार करेगा कौन, आप कितनों को करते हो जो दूसरा आपको करे। कोई मुझे सुख नहीं देता, आप कितनों को देते हो जो आपको सुख दे। कोई पहले अपने आप को देखना होता है, क्योंकि इस संसार में आपको वही मिलेगा जो आप दूसरों को देते हो, जैसा करते हो वैसा ही भरते हो। इसलिए ये गुण मांगने के नहीं होते हैं, ये तो आत्मा के अंदर ही निहित है। इसीलिए कहती है कि शांति चाहिए अंदर जाओ, खुशी चाहिए अंदर जाओ, प्यार चाहिए अंदर से सब कुछ मिलेगा, बाहर कुछ नहीं है। बाहर तो ऐसे है जैसे मृग तृष्णा, एक मृग समझता है कि सामने पानी होगा, पर वो तो रेगिस्तान है, वो तो जंगल में कहीं पेड़ है तो, या रेगिस्तान में उस पेड़ की छाया है, उसको लगता पानी है। या मृग की नाभि में कस्तूरी होती है, उसकी सुगंध उसको आ रही है, पर अपने अंदर नहीं देखता, सोचता सुगंध कहीं बाहर से आ रही है। तो हम सुख को बाहर ढूंढ रहे हैं, इंद्रियों में ढूंढ रहे हैं, वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं, या भगवान से मांगते ही रहते हैं। इसीलिए परिणाम ये होता है कि कहा जाए दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम, न ईश्वर का सुख ले पाते हैं, न आत्मा का सुख ले पाते हैं, न संसार का इस जो प्राप्ति है उसका भी सुख ले पाते हैं, बस भटकते ही रहते हैं। अब इसको कहेंगे अज्ञान। तो राजयोग के माध्यम से हम पहले अपने आप को पहचानते हैं कि इस शरीर के भीतर मैं देखने वाली, बोलने वाली, सुनने वाली, हर कर्म करने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ, एक अजर अमर अविनाशी शक्ति हूँ, जो शरीर से पहले भी थी और इस शरीर के बाद भी रहूंगी। ये शरीर तो पंच तत्वों में विसर्जित हो जाएगा, पर मैं इस संसार में मेहमान बन के आई हूँ, पंछी बन के आई हूँ, परदेसी हूँ। तो आत्मा का घर कहाँ है, पांच तत्वों से पार एक छठा महतत्व है, अखंड ज्योति का एक महतत्व है, जिस महतत्व में आत्मा का सच्चा निवास है, वही उसका मूल वतन है। तो क्यों आए इस दुनिया में, कर्म करने और कर्म करते करते गुण बांटने और उस ईश्वर का नाम रोशन करने के लिए। क्योंकि कहावत है कि भगवान ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया, जैसे हर पिता चाहेगा मेरा बच्चा मेरे जैसा बने, तो परमात्मा के हम बच्चे हैं, हम उनके जैसे हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना, कहावत बड़ी सुंदर है, प्रकृति के लिए भी परोपकारी कहते हैं। नदी अपना जल नहीं पीती, वृक्ष अपना फल नहीं खाते। इस पर एक गीत बना हुआ है, नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपनों का दूजो को जो दे वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। तो भगवान ने हमें क्यों यहाँ भेजा, क्यों भेजा? संसार में बांट के खाओ और खिलाओ, ये संसार का वैभव आपके लिए ही है, लेकिन अपने लिए नहीं है, खिलाओ भी। प्रकृति तो एक बीज लेती है और हजारों बीज देती है, और हम समझते बस लेते ही रहे लेते ही रहे, दे कुछ नहीं। लेकिन मानव तो देव था, नर नारायण स्वरूप था, नारी लक्ष्मी स्वरूपा थी। भगवान ने मानव को देव रूप में इस संसार में भेजा था, अपने सारे गुण मानव में भरे थे। लेकिन आज मानव अपने आप को भूल कर दानव जैसा कार्य कर रहा है, इसीलिए खुद से भी दूर, ईश्वर से भी दूर, अपने घर से भी दूर और भटक रहा है शांति की तलाश में। तो राजयोग कहता है कि अभी ढूंढो मत, तलाशो मत, भटको मत, अब अपने आप को पहचानो कि इस शरीर के भीतर आप एक चेतन शक्ति आत्मा हो। अब आत्मा क्या है, कैसे इस शरीर द्वारा कर्म करती है? आत्मा के लिए कहते हैं आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है। तो अपना मित्र अपना शत्रु कैसे है? क्योंकि आत्मा जो कर्म इस शरीर के द्वारा करेगी वैसा ही फल पाएगी, और इसीलिए आत्मा के लिए कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महात्मा, देव आत्मा। ये आत्मा की अलग अलग स्टेजेस है। तो हम सब आत्माएं हैं। तो कैसे इस शरीर के द्वारा कर्म करती है, क्या अंतर है प्रकृति और आत्मा के बीच में? प्रकृति की भी अपनी चेतनता है, एक एक आपकी जो कोशिका है उसमें भी प्रकृति की चेतनता है, इसलिए ये बढ़ता है, सूखता है, घटता है, सांस लेता है, ये सब है। लेकिन यही केवल जीवन नहीं है। जीवन किसको कहेंगे? जिसके लिए कहते आप वो हैं जो आप सोचते हैं। तो सोचने की शक्ति किसके अंदर है? और जैसा सोचते हैं वैसा ही अनुभव करते हैं। वो सोचने की शक्ति शरीर में नहीं है, आप कहेंगे मस्तिष्क में है, वो भी शरीर का भाग है, लेकिन मस्तिष्क भी एक साधन है। सोचने की शक्ति किसके अंदर है? जैसे एक कंप्यूटर होता है, हार्ड डिस्क होती है, उसका सीपीयू होता है, उसमें बहुत कुछ हार्डवेयर है, लेकिन अगर उसमें सॉफ्टवेयर नहीं डाला, प्रोग्राम नहीं डाला, तो वो तो हार्डवेयर किस काम का? तो ये शरीर के जो भी अंग हैं या मस्तिष्क भी है, ये हार्डवेयर की तरह जरूर है, ये प्रकृति की चीज है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर, वो प्रोग्रामर कौन है? वो आत्मा है। इसलिए कई बच्चे जो अपने पूर्व जन्म की याददाश्त रखते हैं, कैसे रखते हैं? वो इस मस्तिष्क की तो पैदाइश नहीं है, इस मस्तिष्क में कहां से वो याददाश्त आई? वो तो पूर्व जन्म का तो मस्तिष्क को दूसरा होगा ना, वो तो खत्म हो गया, वो तो जल गया, पर फिर भी वो याददाश्त है इस जन्म में, कैसे है? कई ऐसे व्यक्ति बिल्कुल मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, ऑपरेशन होते 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 हार्ट बीट बंद हो जाता है, बिल्कुल खत्म, आंखें पथरा जाती है, एकदम मुर्दा हो गया, धड़कन नहीं, कुछ नहीं। अब डॉक्टर सोचते क्या किया जाए, पंप करते लेकिन फिर भी नहीं चलता, पर थोड़ी देर के बाद वो इंसान जाग जाता है, एकदम मर गया था, फिर 10-15 मिनट के बाद जाग जाता है, और जाग करके वो बताता है कि मैं आपको ऊपर से देख रहा था। ऊपर से अपने शरीर को भी वो देख सकता है। कैसे देख सकता है? आंखें तो शरीर में थी, तो जरूर वो कोई ऐसी शक्ति है जो आंखों के बिना भी देख सकती है। ये आंखें तो इस संसार को देखती है, लेकिन आंखें नहीं, वो शरीर में होते हुए किसने देखा ऊपर से? केवल इतना ही नहीं, डॉक्टर्स जो कुछ भी आपस में बातचीत कर रहे हैं वो भी वो सुनता है और बताता है कि आप लोग जो बातें कर रहे थे वो मैं सब सुन रहा था। अपने डेड बॉडी को देख रहा है, डॉक्टरों को देख रहा है, उसको गुस्सा भी आ रहा है, अरे मैं तो सब देख रहा हूँ, पर बोल नहीं पाता, आवाज नहीं निकलती आती, क्योंकि वो तो कंठ में है ना आवाज। परंतु कौन सी शक्ति है जो देख भी रही है, सुन भी रही है, बिना आंखों के, बिना कान के, और बोल भी रही है लेकिन आवाज नहीं निकलता, क्योंकि वो प्रकृति की चीज है। तो वो है आत्मा, और आत्माओं के देश में आवाज नहीं है, वो केवल प्रकृति में ही है। लेकिन देखने की शक्ति है, और वो शक्ति क्या है? मन। मन की आंख इतनी तेज है, जो भूतकाल 20 साल पहले जो आपके जीवन में कोई घटना घटी होगी, वो मन के पटल पर, एक स्क्रीन पर ऐसे आ जाता है जैसे अभी अभी आप उसको देख होता हुआ देख रहे हो। ये कैसे पता चलता? मन की आंख देखती है। तो मन भी एक आंख है। ये मन किस में है? आत्मा में है। कई समझते हैं मन मस्तिष्क का एक भाग है, वास्तव में नहीं। मन मस्तिष्क का भाग नहीं है, ये प्रकृति की चीज नहीं है, ये आत्मा की शक्ति है। और इसी के लिए ही भगवान ने कहा है, मन मना भव, इस मन को मेरे में लगाओ। ये नहीं कहा तन मना भव, तन को मेरे में लगाओ, ये नहीं कहा। भगवान को तन नहीं चाहिए मेरा, पर मन चाहिए। मन अर्थात आत्मा के सोचने की शक्ति, जिसको तरंगों से भेंट किया गया है। जैसे तरंगों से कैसे भेंट करते हैं? तरंगे वास्तव में एक करंट के रूप में है, ऊर्जा के रूप में है। तो ये आत्मा की ऊर्जा है, शक्ति है, जो प्रकृति की शक्ति से बहुत ऊंची शक्ति है। कई लोग मन की ऊर्जा को भी प्रकृति की ऊर्जा मानते हैं, हम कहते हैं बिल्कुल गलत है। हम क्या उदाहरण देते हैं? प्रकृति के अंदर जितनी भी ऊर्जाएं हैं ना, जैसे ध्वनि शक्ति ऊर्जा या प्रकाश की ऊर्जा, ये सब तरंगे हैं, लेकिन इन तरंगों की माप होती है। प्रकाश की किरण जब सूरज से निकल करके धरती तक पहुंचती है तो कहते हैं 8 मिनट लगते हैं। किरण निकली और यहाँ पहुंची धरती पर, 8 मिनट लगते हैं कम से कम। उसके आधार पर सूरज कितना दूर है धरती से, प्रकाश की किरण की गति क्या है, ये सब विज्ञान के अनुसार माप करते हैं। लेकिन मन को सूरज तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी? हाँ? कितनी देर लगेगी? कितनी देर? तो मन की गति कितनी है? माप सकते हैं? चलो कोई सोचे ये शहर बीच में नदी है और ब्रिज है, तो दोनों शहरों को ब्रिज मिलाती है। तो मन का तन पर प्रभाव, तन का मन पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन कौन किसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है? तन का मन पर प्रभाव भले पड़ता है। अगर बीमार हैं आप, बार बार ये सोचे मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं बीमार हूँ, लेकिन 80% से भी ज्यादा असर मन का तन पर पड़ता है। इसीलिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि 80% बीमारियां शरीर की वो मानसिक कारण से है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइकोसोमेटिक डिजीजेस। साइको पहले है और उससे क्या होता है? टेंशन, तनाव, चिंता, भय, एंजाइटी, डिप्रेशन, और जैसे ये बीमारियां मनोरोग आते हैं, तुरंत उनका असर तन पर पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, एक्जिमा हो जाएगा, कई प्रकार के शरीर के रोग होते, हार्ट अटैक आ जाएगा, क्योंकि मन का तन पर प्रभाव है। तो इसीलिए पहले मन को सुधारना बहुत जरूरी है। हाँ, तन को सुधारने के लिए व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अच्छी बात है, ये अच्छा है, तंदुरुस्त रहता है तन। लेकिन 80% जो मन कारण है उसको कब सुधारेंगे? वो तो 20% चलो सुधरेगा मन तन को सुधारने से, और 80% जो तन के रोग मन के कारण है, पहले तो उसको सुधारना पड़ेगा। तो राजयोग के माध्यम से हम पहले मन को पहचानते हैं कि मन आत्मा की सोचने की शक्ति है। ये एक आध्यात्मिक ऊर्जा है जो आत्मा के साथ यूज होती है या प्रयोग में आती है। अब मन कई बातों से प्रभावित होता है, तन से भी प्रभावित, वातावरण से प्रभावित, अन्न से प्रभावित, संग से प्रभावित। इसलिए मन में सदा एक द्वंद चलता है, द्वंद्व, करे न करे, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हाँ, हो न हो, हाँ ना, हाँ ना। इसीलिए कई बार हम कहते हैं पता नहीं, समझ में नहीं आता क्या करे। एक मन कहता है करो, दूसरा मन कहता है नहीं करो। अब क्या करो, समझ में नहीं आता है। तो कितने मन है, एक या दो? मन तो एक ही है ना, पर ये दो पहलू है। क्योंकि एक मन वो होता है जो इंद्रियों से प्रभावित है, वातावरण से प्रभावित है, संग से प्रभावित है, पर दूसरा पहलू मन का है जो बुद्धि से प्रभावित है। इसीलिए कहते हैं सोच समझ कर कर्म करो। तो सोचने का काम मन का है, वो तरंगे हैं, एक सेकंड में कहां से कहां पहुंच सकती है, लेकिन सोच के ऊपर समझ है, जिस समझ शक्ति को कहते बुद्धि, विवेक, अंतर आत्मा की आवाज, जो हमें सदा ही सही दिशा बताती है। अगर हम गलत कर्म करने जाते हैं वो आवाज रोकती है, क्योंकि आत्मा अपने असली रूप में बड़ी शुद्ध है, बहुत शुद्ध है। जैसे हमने सफेद वस्त्र पहने हैं, कितने साफ हैं, परंतु अगर इन साफ वस्त्रों पर जरा सा दाग लग जाए तो दिखाई देगा, जरूर पता चलेगा दाग लग गया है, अच्छा नहीं लगेगा, ये दाग क्यों होना चाहिए, सोचेंगे भी मिट जाए, ये दाग अच्छी बात नहीं है। तो आत्मा अपने मूल स्वभाव में इतनी शुद्ध है कि जरा सा भी बुरा विचार मन करता है इंद्रियों की उत्तेजना से, बुद्धि उसको रोकती है, ये अच्छा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। लेकिन मन क्या करता है, अगर इंद्रियों के प्रभाव में ज्यादा आ जाएगा तो बुद्धि की आवाज को दबाता है, हट जा, हाँ मत सोच, मत सोच, हाँ करूंगा, हाँ करूंगा, तो बेचारी बुद्धि दब जाती। जैसे किसी का गला ही घोट दो तो क्या होगा, वो चिल्ला रहा है मत करो मत करो, उसका गला दबा दिया या उसका मुंह ही बंद कर दिया, बेचारा क्या जाए करेगा, वो घुटन होगी उसको, मर जाएगा, सांस ही नहीं ले पाएगा। तो बुद्धि ये अंतरात्मा की आवाज, ये विवेक शक्ति है, ये हर आत्मा के अंदर है। इसलिए देखेंगे छोटा बच्चा भी, आत्मा तो है ना उसने, बच्चा कभी भी झूठ नहीं बोलता है, उसे सच बोलना सिखाया नहीं जाता है, वो सच ही बोलता है, पर हाँ झूठ बोलना जरूर सिखाया जाता है। बच्चे को झूठ बोलना जरूर सिखाते, तुम ऐसे कहना, तुम ऐसे कहना। हाँ, हम लोग एक चित्र दिखाते हैं कि बच्चे ने टेलीफोन उठाया और वो टेलीफोन पर किसने कहा कि पिताजी को बुलाओ, मैं फलाना बात कर रहा हूँ। तो पिताजी को कहा, पिताजी आपके लिए फोन है, तो कहा फलाना है, उसको बोलो पिताजी घर में नहीं है। अब किसने झूठ बोलना सिखाया, पिता ने सिखाया ना, देख रहा है बच्चा कि पिता घर में बैठा और कहता घर में नहीं है, पर बच्चा बड़ा सच्चा है, वो कहेगा डैडी कहता है मैं घर में नहीं हूँ। अब उस बेचारे को तो झूठ बोलना आता ही नहीं है कि डैडी घर में नहीं, पर डैडी ने जो शब्द बोले, डैडी माना उसने कहा जाओ उसको बोलो पिता घर में नहीं, तो डैडी तो बोल रहा है। तो क्या है कि आत्मा अपने मूल स्वभाव में तो बड़ी शुद्ध है, इसीलिए बुद्धि विवेक की तुलना किससे की गई है? एक तराजू से की गई है। तराजू न्याय देती है, निर्णय देती है, और मन दो वकीलों की तरह है, वो अपनी दलील देगा, वो अपनी दलील देगा, लेकिन न्याय तो जज करेगा ना। जब वकील शांत होंगे तब जज न्याय करेगा, वो पक्षपात नहीं करेगा। अगर जज पक्षपात करे, एक का सुने दूसरे का नहीं, तो ये तो गलत हो जाएगा। न्याय माना, न्यायाधीश माना, न्याय करने वाले, पक्षपात रहित। इसलिए आप देखेंगे न्यायालय को क्या कहते हैं, न्याय मंदिर। ये भगवान का मंदिर जैसे है, क्योंकि भगवान भी धर्मराज के रूप में है, वो सच्चा न्यायकारी है। ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो इसीलिए बुद्धि जैसे भगवान ने हमको दी हुई है, ऐसे नहीं कि हमको नहीं मिली है। इसीलिए आत्मा को क्या कहते हैं, परमात्मा का अंश मानते हैं। अंश का मतलब है कि जो ईश्वर के गुण है वो आत्मा में भी है, इसलिए वो बुद्धि परमात्मा की ही दी हुई है। इसलिए उसकी तुलना एक तराजू से करते हैं। तराजू केवल एक ही बात देखती है, वो केवल वजन को देखती है, वजन कितना है, चाहे हीरा डालो चाहे पत्थर डालो, तराजू को कोई मतलब नहीं है। तो जीवन में मूल्य ये बुद्धि देखती है, समझ देखती है। इसलिए कहते हैं सोच करके फिर समझो इसका नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा, फिर करो। तो समझ शक्ति बुद्धि, फिर कर्म करने की शक्ति, ये तीसरी शक्ति है आत्मा की, जिसको कहते हैं संस्कार। ये आत्मा के कर्म करने की शक्ति है, क्योंकि आत्मा ही कर्म करती है। इसलिए क्या कहते हैं, मनुष्य अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, लेकिन जो उसने कर्म किए हैं वो उसके साथ जाते हैं। तो कैसे जाते हैं साथ में, तो तीसरी शक्ति आत्मा की संस्कार। और उसकी तुलना किससे की है, एक सीडी से। पहले जमाने में रिकॉर्ड होते थे, अभी इसको सीडी का रूप दे सकते हैं, डीवीडी, वीसीडी या सीडी, उसके अंदर रिकॉर्ड होता है, फिर वो सीडी प्लेयर में डालते हैं, फिर सुनाई देता है या दिखाई देता है, उसके अंदर सब मर्ज होता है, या कैसेट के अंदर जैसे समाया होता है। तो जो कुछ भी हम कर्म करते हैं वो निष्फल नहीं जाता, व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल निर्धारित होता है, निश्चित होता है, वो उसके अंदर समाविष्ट हो जाता है, लेकिन समय पर फिर वो बचता है। इसीलिए कोई ये सोचे अच्छा हमने किया तो क्या हुआ, किसने देखा, भले किसी ने नहीं देखा, पर आपने जो किया वो आपके ही आत्मा में रिकॉर्ड हो गया, संचित हो गया, फिर आप ही उसके कारण बन जाओगे, आपके कर्म ही जो कुछ परिणाम भी होगा। और फिर इन संस्कारों का प्रभाव फिर मन पर पड़ता है, वही संस्कार फिर मन को विचार देंगे। तो मन एक द्वंद नहीं रहता है, इंद्रियां अपना काम करेगी, बुद्धि आवाज करेगी, संस्कार अपना काम करेंगे, तो मन तो चंचल ही हो जाता है। लेकिन राजयोग हमें क्या कहता है कि वास्तव में आत्मा तो मालिक हो, अपने अनादि अविनाशी संस्कारों को पहचानो। हर आत्मा अपने अनादि अविनाशी संस्कारों में या स्वभाव में अति शुद्ध है, अति पवित्र है। सात मूल गुण है, सात मूल गुण ये आत्मा के निजी गुण है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोर वैल्यूज। और इन्हीं मूल्यों को प्राप्त करने लिए ही मेरा सारा, सारी मेरी मेहनत है, मेरा जीवन उसी में जाता है। वस्तु प्राप्ति, वैभव प्राप्ति, ये तो निमित्त कारण बन सकते, लेकिन अंतिम लक्ष्य वो सात मूल गुण है। कौन से? पहला गुण है ज्ञान। कहते हैं ज्ञान बाहर से नहीं आता, अंदर से आता है। जो बाहर से आता है ना, वो सूचना है। सूचना तो बहुत मिलती है, इन्फॉर्मेशन, ये भी सूचना वो भी सूचना, मीडिया से इन सूचना मिलती है, रेडियो से, टीवी से, अखबारों से, इंटरनेट से, ये सब बाहर से आता है, पर तो जो भीतर से आता है वो ज्ञान है। जैसे भोजन हम खाते हैं वो तो स्थूल चीज है, पर वो शक्ति कब बनता है, जब हजम होता है, फिर उसके बाद खून में जाता है, तब वो शक्ति का रूप बन जाता है। इसलिए ज्ञान एक शक्ति है। तो जो हमने सुना, जब तक उसको अंतर आत्मा में अनुभव नहीं किया, वो ज्ञान के रूप में नहीं प्रकट होगा। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकल जाएगा या मुंह से निकल जाएगा, अंदर नहीं गया। और जो अंदर से आया वही ज्ञान है, वो आत्मा आवाज देती है। और जब ये ज्ञान हमें मिला कि मैं तो एक आत्मा हूँ, एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, अब इसका अनुभव करते हैं, अब उस अनुभव के आधार पर फिर चिंतन करते हैं, तो आत्मा को ज्ञान का प्रकाश अनुभव होता है, समझ अनुभव होती है, उचित अनुचित की परख मिलती है। और जहां ये ज्ञान हम आत्मा को अनुभव हुआ, तो दूसरा गुण है पवित्रता। पवित्रता ये आत्मा की बहुत बड़ी शक्ति है। ये पवित्रता ही शांति की जननी है। हम शांति शांति कहते हैं, लेकिन शांति मन में तब आएगी जब पवित्र विचार मन में आएंगे। और ये पवित्र विचार तब आएंगे जब ये ज्ञान अंदर से आएगा कि मैं तो आत्मा हूँ ही, शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा, शांत स्वरूप आत्मा। और जहाँ शांति है तो चौथा गुण है प्रेम। कहा जाता, ढाई अक्षर प्रेम का जो पढ़े वही पंडित होता है, पोथी पढ़ने से पंडित नहीं बनता। तो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ना माना अपने अंदर में महसूस करना कि मैं आत्मा प्रेम स्वरूप और सबके प्रति प्रेम बरसाऊं। मैं खुद ही प्रेम स्वरूप हूँ, सब आत्माएं हैं, सब प्रेम स्वरूप है, तो किसी के प्रति भी नफरत कभी नहीं आएगी। वसुधैव कुटुंबकम लगेगा, एक ईश्वर के हम सब संतान, भाई भाई है आपस में, भाई भाई का कितना प्यार होना चाहिए। लेकिन आज हमने हदे बना ली है शरीर के आधार पर, धर्म, जाति, भाषा, प्राण, देश, ये सब हदे बना दी, और एक दो के आगे नफरत की दीवारें खड़ी कर दी। ये तेरा, ये मेरा, मेरा नहीं दूंगा और तेरा भी मैं छीन लूंगा। हा? मेरा तो दूंगा ही नहीं, मेरा सो मेरा पर तेरा भी मेरा। इस प्रकार का आसुरी लक्षण हम क्यों जताते हैं? क्योंकि हम अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हैं। तो इसलिए हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में प्रेम स्वरूप है। और जहाँ शांति है, प्रेम है, तो उसके बाद पांचवा गुण है सुख। सुख, आत्मिक सुख, जो अंतरात्मा के संतोष में अनुभव होता है। संतोष एक जीवन का बहुत बड़ा गुण है। जिसके जीवन में संतोष रूपी गुण नहीं है, मानो वो धनवान होते हुए भी भिखारी है, कंगाल है। और जिसके जीवन में संतोष रूपी धन है, गुण है या शक्ति है, चाहे धन उसके पास ज्यादा न हो, पर वो बहुत बड़ा अमीर है, हाँ, जरूर है, क्यों नहीं। तो मैं आत्मा कौन हूँ? सुख स्वरूप हूँ। सुख, ये आत्मिक सुख, परमात्मा में लगन में मगन होने का सुख, इनसे ऊंचा और क्या सुख हो सकता है। और इसी सुख में आत्मा रमण करती रहे, सच्चे सुख में, तो छठा गुण अनुभव होता है, जिसको कहते आनंद। कई लोग इस आनंद शब्द को बहुत ही भौतिक रूप में लेते हैं। कुछ चटपटी चीज खा लेंगे, कहेंगे वाह वाह आनंद आ गया, खट्टा मीठा तीखा बहुत चटपटा, शीशे भी करते रहेंगे आनंद भी आ गया। जीव रस के पीछे उसको आनंद समझते हैं, भले अंदर जाकर के वो जला दे वो परवाह नहीं, पर जीव को रस मिलना चाहिए, नहीं तो अंदर ही नहीं जाता है, कैसे जाए, फीका फीका लगता है, उल्टी आती है। तो क्या हम जीभ के लिए केवल खा रहे हैं क्या? नहीं, परंतु जीभ रस मनुष्य को कितना आकर्षित करता है और उसी को आनंद समझ लेते हैं। कोई ऐसी फिल्म देख ली, आनंद आ गया, अरे आंखें ही हमारी कमजोर हो गई, वो तो देखा ही नहीं। कोई ऐसा गीत सुना जोर जोर से, इतना जोर से कि आनंद आ रहा है, आनंद आ गया, भले कान का पर्दा ही फट जाए हर जाने, पर आनंद आता है उसको। बताओ उसको क्या कहेंगे? ये अज्ञान है। सच्चा आनंद किसको कहते हैं? जो आत्मा का आनंद हो। इसीलिए आनंद शब्द हम संतों महात्माओं के नाम में जोड़ते हैं, सच्चिदानंद स्वामी, सत्यानंद, प्रेमानंद, धर्मानंद, आत्मानंद, शांतानंद, विवेकानंद। नहीं, आनंद शब्द उनके नाम में आता है, क्योंकि वो आनंद आत्मिक सुख का ही चरम स्वरूप है। और सबसे ऊंचा आनंद कौन सा है? परमानंद। परमानंद माना किसका आनंद? जब पेट्रोल आना शुरू हुआ और गाड़ी चलेगी, तो वो मालिक बन करके गाड़ी को कंट्रोल कर सकता है। तो ये नहीं कि ये कोई अंतिम स्थिति है, ये आरंभ है। हम यहाँ से आरंभ करते हैं और अपनी इंद्रियों को सकाश देते हैं, और नहीं चाहिए न्यारे हो जाते हैं। जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को निकालता है, अंग निकालता है ना, हाथ पैर सिर। अब हम ऐसे तो नहीं निकाल सकते और अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि ये हड्डियों का ढांचा है, लेकिन कम से कम मन से तो इनसे न्यारे हो सकते हैं और अपने आप को यहाँ महसूस करें। जैसे स्त्रियां यहाँ तिलक लगाती है, ये तिलक आत्मा की निशानी है। यहाँ पर तीसरा नेत्र भी दिखाते हैं, ये भी आत्मा की निशानी है, इसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं। तो मैं क्या अंदर में निश्चय करूं कि मैं एक ज्योति, प्रकाश का पुंज, चमकता हुआ सितारा आत्मा, या भ्रकुटी में निवास करने वाली चेतन शक्ति, इस देह की इंद्रियों का मालिक। तो अपना ध्यान यहाँ करें। आंखें बस सामने देख रही है, पर मन से हम कहाँ ध्यान कर रहे हैं? यहाँ भ्रकुटी के मध्य। फिर उसके बाद हम इस देह से भी न्यारे हो जाएं। ये देह तो एक वस्त्र है, आत्मा तो एक पंछी है, आत्म पंछी कहते हैं, आत्मा को परदेसी कहते हैं। कहते पंछी और परदेसी किसी के मित्र नहीं होते। पंछी पिंजरे में कैद है, इसीलिए वो वहां बैठा हुआ है, वरना पंछी का बसेरा तो आकाश है। वो तो दाना चुगने के लिए केवल धरती पर आता है, फिर उड़ जाता है। लेकिन आज हम पिंजरे के पंछी बन गए हैं और समझ बैठे हैं ये सोने का पिंजरा भी बड़ा सुंदर है, यही ठीक हूँ मैं, दाना तो मिल रहा है, और वो आकाश जो हमारा सच्चा बसेरा है उसको तो भूल ही गया हूँ। इसीलिए डरता ही रहता हूँ, पंखों को ही भूल गया हूँ कि मेरे पास पंख भी है, मैं उड़ सकता हूँ, मन से तो उड़ सकता हूँ। जैसे एक पंछी किसी बिल्ली को देखता है, बिल्ली दौड़ करके उसके सामने आ रही है पकड़ने के लिए, तो बेचारा पंछी डर जाता, अरे बिल्ली खा जाएगी, तो डर के मारे आंखें बंद कर देता है। पर ये भूल जाता उस समय कि पंख तो है मेरे पास, बिल्ली को पंख तो है नहीं, वो तो उड़ेगी नहीं, मुझे पकड़ेगी कैसे अगर मैं उड़ जाऊं। पर उस समय भूल जाता अपने पंखों को, डर के मारे वही खड़ा हो जाता, तो बिल्ली पकड़ लेती है उसको। तो ये संसार का आकर्षण हमें अपनी ओर, जैसे बिल्ली खींचती है वैसे बिल्ली की तरह माया, बिल्ली कहते वो अपनी ओर खींचती है। हम भूल जाते हैं कि मैं तो इस संसार में एक मुसाफिर हूँ, ये दुनिया तो मेरा घर है ही नहीं। तो मन और बुद्धि से हम उड़ान भर सकते हैं, शरीर से तो नहीं ऐसे उड़ान भरेंगे, लेकिन मन और बुद्धि से एक उड़ान भर सकते हैं। कहाँ? इस पांच तत्वों की दुनिया से दूर। एक छठा तत्व है, ये पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी तो इस संसार रूपी ब्रह्मांड के अंदर है, या ये एक ही लोक है, परंतु इस लोक के पार एक दूसरा लोक है जिसको सूक्ष्म देव लोक कहते हैं, सूक्ष्म लोक कहते हैं, और उसके भी पार एक तीसरा लोक है जिसे परलोक कहते हैं, परम धाम कहते हैं, शांति धाम कहते हैं, मुक्ति धाम कहते हैं, निर्वाण धाम कहते हैं। ये निर्वाण अवस्था या मुक्ति की अवस्था आत्मा को कहाँ अनुभव होती है? इस संसार में तो नहीं हो सकती, ये तो कर्म क्षेत्र है, लेकिन वो अनुभूति आत्मा को उसी धाम में होती है जो अखंड ज्योति का एक महतत्व है, सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व है, और उस महतत्व में मैं चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ। अपने आप में ये निश्चय करना है, वो मेरा असली घर है। जब हम दुखी होकर भगवान को पुकारते हैं, हे प्रभु बस उठा लो, नहीं जीना इस दुनिया में, नहीं रहना, ये क्यों हम पुकारते हैं? क्योंकि इस संसार से दुखी हो गए, तो घर याद आता है आत्मा को। कहते हैं हम कैसे उस घर को याद करें, तो हम कहते दुखी होके तो करते ही हो उस घर को याद, उठा लो भगवान तो घर को याद करो। जैसे कोई व्यक्ति किसी लंबी यात्रा पर जाता है तो थोड़े दिनों के बाद उसको घर याद आता है, सोचता है मैं कब घर लौटूंगा। तो आत्मा को भी अपना घर याद आता है, लेकिन दुख में ही घर याद आता है, सुख में नहीं आता है। सुख में नहीं आता है ना, सुख में भी आना चाहिए, केवल दुख में ही नहीं। अपना घर कभी भूलना होता है क्या? घर भूले तो क्या होगा? तो यहाँ खुद को भी भूले, घर को भी भूले, तो एक बच्चा अगर घर भूल जाए तो भटकेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, दुखी होगा। तो हम क्यों हो गए दुखी? क्योंकि उस घर को भूल गए, ठिकाना ही भूल गए। तो कई कहते हैं बस भगवान उठा ले, हम कहते दुखी होके मत कहो, भगवान उठा लो। वो तो जब आपका हिसाब किताब शरीर से पूरा हो जाएगा तो आत्मा शरीर से पूछेगी भी नहीं कि मैं जाऊं पूछेगी क्या मैं जाऊं? वो मेहमान तो फिर भी पूछता है मैं जाऊं, पर परदेसी नहीं पूछ सकता है मैं जाऊं। उसका वीजा ही पूरा पूरी हो गई तो जाना ही पड़ेगा, न इच्छा हो तो भी, नहीं तो कानून के विरुद्ध है दूसरे देश में रहना अगर वीजा नहीं है तो। इसीलिए आत्माओं की ये दुनिया घर नहीं है, घर तो आत्माओं का परमधाम है। तो कैसे जाएंगे? अब जब तक आत्मा का समय हो उस घर जाने में, तब तक मन से तो जा ही सकते हो। अब यहाँ पर आप बैठे हो, काठमांडू से आए हो, विराट नगर से आए हो, कहाँ से भी आए हो, कटक से आए हो, लुधियाना से आए हो, अब घर उस अपने शहर में, और आपका जहाँ बिल्डिंग है, आपका जहाँ फ्लैट है या मकान है, आपका जो बेडरूम है या जो कुछ भी जहाँ रहते हो, उसको याद करने में कितनी देर लगेगी? कितनी देर? हाँ, एक सेकंड सोचो और पहुंच गए। मन से तो पहुंच सकते हो ना, तन से पहुंचने में दो चलो दिन भी लग जाए, तीन दिन भी लग जाए, जितना दूर से आए, पर अगर मन से पहुंचना है तो एक सेकंड भी नहीं लगता। तो उस घर में भी पहुंचने में एक सेकंड लगना चाहिए मन से। तो भगवान को पुकारो मत दुखी होके, भगवान उठा लो। और जब जाने का समय होगा तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, अभी थोड़ा और दिन तो रहने दो। हाँ, मोह के वश हो जाते हैं। हम लोग एक नाटक दिखाते हैं, स्वर्ग में एक सीट खाली है, तो जब दुखी होते हैं तो हर एक भगवान कहते भगवान बस उठा लो, और जब नारद मुनि जी आता है कहने के लिए कि स्वर्ग में एक सीट खाली है, चलने के तैयार हो, कहते तो नहीं 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 अभी तो ये काम है, अभी तो वो काम है, अभी वो काम है, वो काम है। एक बूढ़ी औरत भी कहती है नहीं 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 अभी तो मेरा पोतरा पर पोतरा, उसकी बहू, उनका मुंह देखूं फिर जाऊंगी, अभी नहीं। हाँ, ऐसा मोह हो जाता है संसार में। फिर बोलते क्यों हो कि हे भगवान उठा लो? तो एक वो नाटक में दिखाते जब बूढ़ी को कहा कि क्यों तुम नहीं तो कहा उठा लो, कहते वो तो मैंने झूठ झूठ बोला, मैंने फिर समझा कि सच हो जाएगा तो अंदर एक और बाहर कुछ और। तो भगवान कहते तुम ऐसे कहते ही क्यों हो? और अगर सचमुच वो अनुभव करना है तो मन से भी कर सकते हो, मन से चले जाओ उस धाम में और ऐसे महसूस करो कि अखंड ज्योति का एक महातत्व है, जैसे ये नीला आकाश का तत्व है वैसे वो लाल सुनहरा प्रकाश का एक महातत्व है। वो योगियों ने या संतों ने महात्माओं ने बहुत दर्शन किए, इसलिए महात्मा बुद्ध ने जब उसका अनुभव किया तो यही कहा बस उस निर्वाण में जाना है। तो वो निर्वाण धाम आत्मा का वो मुक्ति धाम है जहाँ आत्मा सर्व बंधनों से मुक्त अवस्था में है। स्वतंत्रता हर एक को अच्छी लगती है, पर सच्ची स्वतंत्रता माना देह के इंद्रियों के आकर्षण से भी मुक्त, वो है सच्ची स्वतंत्रता। और आत्मा उसी धाम में अपने आप को महसूस करे, उस बेहद के महतत्व में मैं एक चमकता हुआ सितारा विराजमान हूँ, और उस अवस्था में मैं आत्मा अपने मूल गुणों का मूल स्वभाव का आह्वान करूं। कैसे आह्वान करूं? चिंतन के द्वारा, क्योंकि आप जैसा सोचेंगे वैसी ही अनुभूति होगी। अगर आप ये सोचते हैं मैं बहुत अशांत हूँ बहुत अशांत हूँ, ये क्यों सोचते? क्योंकि देह के अभिमान में है, देह समझ रहे हैं मेरा 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 कर रहे हैं, फिर वो चीज कोई गई हाय मेरा चला गया मैं तो बहुत दुखी हो गया, मेरा मेरा का इसलिए दुखी हो गए। लेकिन एक सेकंड में न्यारे हो जाओ, मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति धाम का वासी हूँ। तो अगर ये निश्चय है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको अशांत नहीं कर सकेगी। पर अगर मोह माया में फंसे हुए हैं फिर शांति 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 कितना भी पुकारो चिल्लाओ कोई शांति नहीं दे सकेगा आपको। जैसे एक पंछी वो टहली को पकड़ के रखा है डाली को जोर से, और देख रहा है दूसरे पंछी तो उड़ रहे हैं स्वतंत्र होके, वो कहता है मुझे भी छुड़ाओ मुझे भी छुड़ाओ, तो दूसरे पक्षी कहते हैं कितना मूर्ख है ये पकड़ के रखा है खुद और चिल्लाता है छुड़ाओ, पंजा छोड़ो तो पंख तो होए। अब मैं यहाँ बैठी हूँ और मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ कहीं, तो मैं इसको ही उठा के ले जा सकती हूँ क्या भाई? अपनी बैठ करके ले जा सकती हूँ, अगर जाना है तो हल्का होना पड़ेगा ना। इसको उठाने की कोशिश करूं बैठ करके उठा सकूंगी उठा सकूंगी? तो हम लोग तो यही सोचते ये भी ले जाऊं ये भी लो ये भी लो ये भी लो, फिर बंद जाते हैं। हाँ बंद जाते हैं हम। अब ये गलत है, एक सेकंड में न्यारे हो जाओ, क्योंकि अंत में ये बहुत काम आएगा। अंत में कैसे काम आएगा? लोग मरने से बहुत डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि मोह ममता है, व्यक्ति में मोह, वस्तु में मोह, वैभवों में मोह, मोह ही मोह है, मोह अटका हुआ है, वो अटकता अटकाता है। और जब आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आता है तो बहुत कष्ट होता है। जैसे रोटी के अंदर बाल हो ना, बाल, वो बाल को आप निकालो रोटी से तो क्या होगा? टुकड़े टुकड़े करके निकलेगा, क्योंकि रोटी थोड़ी सख्त होगी। मान लो आटे के अंदर बाल चला गया तो रोटी में भी आ गया, फिर निकालेंगे तो टुकड़ा टुकड़ा निकलेगा। लेकिन अगर मक्खन में बाल है तो बाल कैसे निकलता है? कितना सहज, क्योंकि मक्खन तो मुलायम है। तो मक्खन से बाल, आत्मा सहज न्यारी हो जाए तो अंत के समय भी कोई कष्ट नहीं होगा। जैसे टाइट कपड़े किसने पहने हो तो कितना कष्ट होता है निकालने। पहले जमाने में चूड़ीदार पहनते थे, अभी भी कई पहनते हैं चूड़ीदार, एक 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 वो चूड़ी को निकालना पड़ता है, तब जाकर के चूड़ीदार पैजामा निकलता है। पहनने में भी कितनी तकलीफ होती है, और अगर पैजामा है ढीला है तो कितनी देर लगती है। वस्त्र अगर टाइट है तो कितनी तकलीफ होती है निकलने में, पर ढीले है तो सहज। ये तो शरीर भी क्या है? एक वस्त्र के समान है। अब कैसे ढीले हो इस देह रूपी वस्त्र से? चिंतन से, कि मैं आत्मा एक ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चमकता हुआ सितारा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। ये चिंतन करो, और जैसे जैसे ये चिंतन मन को देते जाएंगे बुद्धि के द्वारा, क्या होगा, मन इस तन के आकर्षण से न्यारा होता जाएगा। ये सकारात्मक चिंतन मन को देना होता है, इतना हल्का हो जाएंगे जैसे बोझ उतर गया, भारीपन खत्म हो गया और आत्मा मन और बुद्धि से उड़ान भरेगी उस धाम में। ऐसे मन की आंख से अनुभव करेगी अखंड ज्योति का एक महतत्व, और उस महतत्व में मैं चमकता हुआ सितारा विराजमान। इतनी शांति है, इतनी निरसंकल्पता है, प्रकृति के सर्व आकर्षणों से परे, और उस अवस्था में आत्मा को मुक्ति की अवस्था अनुभव होती है। इसलिए चिल्लाने की जरूरत नहीं, दुखी होने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं, पुकारने की जरूरत नहीं है। वो घर आपका अपना ही घर है, उस घर में जाने के लिए आपको निमंत्रण नहीं चाहिए भगवान का, चाहिए क्या? हे भगवान बुला लो तो निमंत्रण चाहे भगवान देंगे तभी जाएंगे क्या? वो तो अंत में जाएंगे ही सब, वो निमंत्रण तो भगवान का सबको मिलने वाला है, सब रिटर्न टिकट लेकर आए है ना, हा? जैसे ये भी रिटर्न टिकट लेकर आए होंगे तो दुनिया से भी जाने की रिटर्न टिकट तो लाए है ना, शरीर में तो कोई अमर नहीं हो जाएगा। लेकिन उस घर में जब तक जाएं तब तक मन से तो चले जाओ, उड़ जाओ, ऐसे महसूस करो एक बेहद महतत्व जहाँ चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, और उस बेहद घर में मैं एक ज्योति बिंदु आत्मा, प्रकाशमय सफेद सफेद प्रकाश शुद्ध आत्मा विराजमान हूं, और मेरे चारों ओर शांति शांति है, स्वतंत्र हूं। बहुत सुंदर अनुभूति होगी, शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, सबको आत्मा की दृष्टि से देखूं, सब आत्माएं परमात्मा के बच्चे वसुधैव कुटुंबकम, इतना सुंदर अनुभव होगा, ये दुनिया ही मेरा परिवार है ये अनुभव होगा। तो इस दुनिया से भी दूर जहां भी हूं वहां भी आत्माओं का परिवार है, ये हदें सब खत्म हो जाएगी। तो चलिए अब इसका अभ्यास करेंगे थोड़ी देर। तो जो आपने सुना कि मैं कौन हूं, एक आत्मा हूं, एक ज्योति हूं, इस शरीर में भ्रकुटी के मध्य विराजमान एक चमकता हुआ सितारा हूँ, इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूँ, ये शरीर एक डिब्बी की तरह है, मैं इसमें हीरा चमक रहा हूँ, ये शरीर एक दीवे की तरह है, माटी का दीवा, लेकिन उसमें चिराग दीपक वो लव प्रकाश की वो मैं आत्मा हूँ, ये शरीर एक सीप की तरह है, मैं इसमें एक मोती हूँ। बहुत कुछ सुंदर सुंदर रूप से आप भेद कर सकते हैं शरीर और आत्मा के बीच। ये शरीर तो विनाशी है, मैं तो अविनाशी हूँ। ये शरीर तो परिवर्तनशील है, ये आग से जल जाएगा, पानी से डूब जाएगा, हवा से सूख सकती है चमड़ी, सब पानी से गीली हो सकती है, लेकिन मैं आत्मा प्रकृति के स्पर्श से परिवर्तित नहीं होती, न जलती न कटती न सूखती न गीली होती, पर मैं वो चेतन अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ। अब ये जब आत्मा ने निश्चय किया तो मन और बुद्धि इतने उपराम हो जाते हैं इस देह और देह की दुनिया से, और मन की तार उस धाम से जुड़ जाती है, मन की आंख उस घर को देखती है, उस बेहद घर में मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूँ, और उस धाम में मैं अपने गुणों का आह्वान करूँ, क्योंकि जैसा चिंतन करेंगे वैसी ही स्थिति बनेगी। अगर व्यर्थ चिंतन मन में आते हैं, एक सेकंड में उनको ब्रेक लगाओ, अभी नहीं समय है सोचने का। जैसे कार को ब्रेक लगाते हो ना, तो ये भी चिंतन में व्यर्थ अशुद्ध अगर ये विचार आते एक सेकंड में ब्रेक, नहीं अभी नहीं है समय सोचने का, और फिर मन को बुद्धि के द्वारा ये आत्मचिंतन दो, तो जाइए भीतर, शरीर रूपी वस्त्र को खुद से ढीला कीजिए। ये शरीर मुझ आत्मा से अलग है, ये शरीर तो विनाशी है, मैं आत्मा तो अविनाशी हूँ, एक दिव्य ज्योति हूँ, प्रकाश का पुंज हूँ, चैतन्य सत्ता हूँ, प्रकृति के मध्य विराजमान एक दिव्य शक्ति। आंखें सामने देखिए और मन की आंख खुद को देखिए, ज्ञान के दर्पण में मैं आत्मा अति शुद्ध हूँ, एक बेदाग हीरे के समान पवित्र हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मेरा असली धाम पांच तत्वों से पार अखंड ज्योति का महतत्व है, एक सुनहरा लाल प्रकाश का महतत्व, एक बेहद दुनिया, मन की आंख उस धाम को देखिए जहां चारों ओर सुनहरा लाल प्रकाश है, असीम शांति ही शांति है, सर्व आकर्षणों से परे आत्मा कितनी हल्की, अपने मूल वतन में विराजमान है, मैं आत्मा अपने मूल स्वभाव में शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांत स्वरूप, शांति की शक्ति मुझ आत्मा में विद्यमान है, मुझे सर्व आत्माओं के लिए आत्मिक स्नेह है, आत्मीयता है, हर आत्मा अपने मूल स्वभाव में प्रेम स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है, मैं आत्मा भी पवित्र स्वरूप, प्रेम स्वरूप। शांति के धाम में मैं शांत स्वरूप आत्मा अत्यंत निरसंकल्प अवस्था में स्थित हूँ, सर्व बंधनों से मुक्त। कितनी शांति का अनुभव हो रहा है। मैं आत्मा अपने मूल स्वरूप का अनुभव कर रही हूँ। स्वयं में ऐसे समाते जाओ जैसे बूंद सागर में समाती जाती है। स्वभाव में स्थित हूँ।